दिन भर 22 नवंबर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से कहा वो नोटबंदी पर अपने विचार सीधे बताएं। उधर बाहर से आए मजदूरों को हो रही है नोटबंदी से काफी परेशानियां।
पहले सही थी, पहले जब से ये पैसे बंद हुए तब से काम से बंद हो गया जी। बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं जी, क्या करेगा आदमी।
100 वुमेन सीरीज में आज बताएंगे मोहनलालगंज में 8 महिला सांसद चुनने के बाद भी क्यों पिछड़ी हुई हैं महिलाएं।
हमारे यहाँ गांव में इतना ज्यादा नहीं सिचुएशन है कि बाहर लड़कियां ज्यादा निकले या 1000-2000 के लिए इधर उधर जाए, हम लोग फॉर्म भी नहीं भरते हैं ज्यादा।
चर्चा होगी LOC पर 3 भारतीय सैनिकों के मारे जाने की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, अमरेश द्विवेदी से। नोटबंदी के फैसले के बाद जब से संसद की कार्यवाही शुरू हुई है, विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने संसद में कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन मंगलवार को पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से 500 और 1000 के नोट को वापस लेने के फैसले पर अपने ऐप के जरिए राय मांगी है। मोदी के इस ट्वीट पर लोग खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग परेशानियों की बात मानते हुए देश हित में इसे बड़ा और साहसिक फैसला बता रहे हैं, तो कुछ इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं और उनके फैसले पर व्यंग कर रहे हैं। ब्रिटानी अधिकारियों ने नवनिर्वाचित अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस सुझाव को खारिज किया है जिसमें उन्होंने नाइजेल फराज को अमरीका में ब्रितानी राजदूत बनाने की मांग की थी। UK इंडिपेंडेंस पार्टी के नेता फराज ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की पुरजोर वकालत की थी। ब्रितानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं ब्रेक्सिट सेक्रेटरी डेविड डेविस ने कहा है कि अमरीका में ब्रितानी राजदूत सर किम डैरो बहुत काबिल हैं और वो अभी कई साल तक वहां रहेंगे। उधर UKIP नेता नाइजेल फराज ने कहा कि वो इस प्रस्ताव से हैरान हैं। बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 20 नावों में रोहिंग्या मुसलमानों को पड़ोसी देश म्यांमार में वापस भेजा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंचे हैं। ये लोग म्यांमार के रखाइन प्रांत में हिंसा से पलायन कर रहे हैं। रखाइन प्रांत में जारी एक सैन्य अभियान में दर्जनों लोग मारे गए हैं और करीब 30,000 लोग विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अपनी सीमा खोलने की अपील की है। इस बीच सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि चीन उन हजारों लोगों की मदद कर रहा है जो पलायन कर रहे हैं। म्यांमार की सीमा से 3,000 लोग चीनी क्षेत्र में दाखिल हुए हैं। चीनी प्रशासन ने उन लोगों के लिए उचित व्यवस्था की है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हमें उम्मीद है कि म्यांमार के ये नागरिक हालात सामान्य होने और तनाव कम होने पर अपने वतन लौट जाएंगे। ये थे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। चीन में बिना हाथ वाले एक व्यक्ति को कई बैंकों ने होम लोन देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने आवेदन पर फिंगरप्रिंट नहीं दे सकते थे। बचपन के एक हादसे में वू जियानपिंग ने अपने हाथ खो दिए थे। हाथ न होने की वजह से चीन के मध्यवर्ती झेंगझाऊ प्रांत के कई बैंकों ने उनसे कहा कि वो घर नहीं खरीद सकेंगे। चीनी सोशल मीडिया में खबर फैलने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने वू जियानपिंग को लोन दिलाने का की मदद का भरोसा दिया है। स्पेन की पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर ब्राजील की बड़ी तेल कंपनी पेट्रोब्रास से जुड़े भ्रष्टाचार कांड का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। RTD के संक्षिप्त नाम वाले शख्स को पुलिस ने मैड्रिड के एक होटल से गिरफ्तार किया। 43 साल के शख्स के पास ब्राजील और स्पेन की दोहरी नागरिकता है। ब्राजील के अधिकारियों को हवाला और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में इनकी तलाश थी। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। सदन से लेकर सड़क तक जहां विपक्ष नोटबंदी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में जुटा है, नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि वो एक ऐप के जरिए नोटबंदी पर अपने विचारों से सीधे उन्हें अवगत कराएं। उन्होंने जनता से सर्वेक्षण में शामिल होने को कहा जिसमें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद किए जाने के संबंध में कई सवाल दिए गए हैं। मैंने अपने नए साथी भरत शर्मा से पूछा कि ये किस तरह की पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
ये पहल एक ऐप के रूप में सामने आई है। नरेंद्र मोदी साहब ने आज ट्वीट किया और ट्वीट में ये जानकारी दी कि वो पुराने नोटों पर जो फैसला लिया गया है उस पर उनकी सीधी राय जानना चाहते हैं, जनता से खुद जानना चाहते हैं। तो उन्होंने NM एक ऐप है, नरेंद्र मोदी ऐप, उस पर जाकर इस सर्वे में हिस्सा लेने का न्योता दिया है जनता को, और इस पर जाकर जनता राय बता सकती है कि नोटबंदी का फैसला सही है या गलत है।
तो कुल कुछ ये सवालों की शक्ल में है, किस तरह के सवाल पूछे हैं उन्होंने
रेहान? तकरीबन 9 सवाल हैं और एक में राय मांगी गई है। 10 सवाल हैं जिसमें काले धन से जुड़े सवाल हैं। उनमें पहला सवाल है कि आपको लगता है कि भारत में काला धन है। दूसरा सवाल है कि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने और इस समस्या को दूर करने की जरूरत है। इसी तरीके के 10 सवाल तकरीबन हैं। और
उसमें उत्तर मांगे गए हैं या कुछ विकल्प दिए गए?
वैकल्पिक हैं, इसमें विकल्प दिए गए हैं, हाँ या ना के तौर पे भी विकल्प हैं। और आगे चलें तो जैसे एक सवाल है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों के बारे में क्या सोचते हैं? इस पर 5 विकल्प हैं, बेकार है, अपर्याप्त हैं, ठीक हैं, प्रभावी हैं और अभूतपूर्व हैं। तो कुछ सवालों के विकल्प 5 हैं, कुछ सवालों के विकल्प 2 हैं, हाँ या नहीं में।
लेकिन इस तरह का कोई विकल्प नहीं है कि आप इसको सिरे से खारिज करते हैं?
2 सवालों में आपको ऐसा महसूस हो सकता है, मैं आपको उन सवालों का ब्यौरा दे देता हूँ। 6 सवाल है कि क्या आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन से कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी? इसके विकल्प हैं, इसका तुरंत प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ने में समय लगेगा, कम प्रभाव पड़ेगा, पता नहीं, कह नहीं सकते। यहाँ पर जनता के पास इसको सिरे से खारिज करने या ये कहने का विकल्प नहीं मिला है कि नहीं, कोई मदद नहीं मिलेगी।
आपको लगता है कि इसका रिस्पांस आएगा? ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास स्मार्टफोन है? भारत में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है?
125 अरब की इस आबादी में लगभग 20 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, उनमें से बहुत कम लोगों के पास NM ऐप होगी। निश्चित रूप से बहुत सीमित लोगों तक इसकी पहुंच होने वाली है। कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम ये बहुत बड़े पैमाने तक पहुंचेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पहल के बारे में बता रहे थे भरत शर्मा। नोटबंदी लागू होने के बाद से जहां बैंकों और ATM की कतारें अभी भी बरकरार हैं, वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा की मजदूरी करने वालों के भी हाल खस्ता चल रहे हैं, खासतौर से उन मजदूरों के जो दूसरे प्रदेशों से दिल्ली NCR में इसलिए काम करने आए थे क्योंकि यहां दूसरी जगहों की तुलना में मजदूरी ज्यादा मिलती है। BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सैकड़ों मजदूर बिना काम के खाली हाथ बैठे मिले।
ये कैसा चौराहा है जिसको लेबर चौक के नाम से जाना जाता है? मेरे आसपास जितने लोग अभी इकट्ठा हुए हैं, ये सारे लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं, काम की तलाश में आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं। अभी मंजर ये है कि करीब 11:05 हो रहे हैं और ज्यादातर जो है वो अभी बिना काम के हैं। आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
बुलंदशहर के रहने वाले हैं।
यहाँ पर क्या काम करते हैं?
लेबर का काम करते हैं।
लेबर का काम करते हैं। पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा में कैसा रहा है बिजनेस, कैसा रहा है, काम कितना मिला है?
काम हल्का हो रहा है, काम बिना पैसे के।
बिना पैसे के? बिना पैसे के काम कैसे हो पाता होगा?
पैसे बंद होने के बाद काम चल रहा है, ऐसे बोलो ना।
और मजदूरी नहीं मिल रही।
मजदूरी नहीं मिल रही है? अगर मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं आपसे काम के लिए?
ये कहते हैं कि 200 ले लो, 250 ले लो और पुराना पैसा ले लो।
पुराने पैसे ले लो, 500 के नोट ले लो या 1000,
या तो 200-250 पे काम करो, नहीं 500 का लो पुराना।
तो अभी घर में पैसा कैसे भेज रहे, काम कैसे चल रहा है?
काम चल नहीं रहा, बिल्कुल
नहीं चल रहा है। आप कहाँ के?
हरदोई के।
हरदोई उत्तर प्रदेश के हैं आप? कितने दिनों से हैं यहाँ पर, किस तरह का काम करते हैं?
काम मिल ही नहीं रहा है सर।
करते क्या हैं आप?
यही बेलदारी।
बेलदारी का काम करते हैं
जी।
तो कैसे काम चल रहा है, खाना पीना कैसे चल रहा है?
खाना पीना, पैसे ही नहीं होते तो खाना पीना का चलेगा?
उधार उधार लेके अपना काम।
नहीं तो रहते कहाँ है?
बड़ा कॉलोनी में परिवार है मेरा पूरा।
परिवार है? परिवार में कौन कौन लोग हैं?
बीवी है, बच्चे हैं, तो मैं हूँ।
तो घर में खाना पीना कैसे हो रहा है, क्या उधार ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं?
उधार ले रहा हूँ सर।
क्या आपके दिमाग में ऐसा भी कोई ख्याल आया है कि जो थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है उससे परिवार को कुछ दिन के लिए हरदोई भेज दें?
जी।
वहाँ पे कौन देखेगा?
वहाँ पे है।
ऐसा कर रहे हैं लोग? कौन कर रहा है ऐसा? आपके साथ
लोग कर रहे हैं, साथी लोग कर रहे हैं, अपने बच्चों को घर भेज दिया उन्होंने।
आप कहाँ के, नाम बताइए?
शाहजहाँपुर का रहने वाला।
शाहजहाँपुर के रहने वाले? क्या नाम है आपका?
मेरा नाम धर्मेंद्र है सर।
धर्मेंद्र जी, ये बताइए धर्मेंद्र आप यहाँ कितने दिन से हैं?
सर मेरे को यहाँ 3 महीने हो गए।
और क्या काम करते हैं?
लेबरी का काम करते हैं।
लेबरी का काम करते हैं?
लेबरी काम 2 दिन लग जाता है, 4 दिन नहीं लगता सर।
नहीं लगता?
नहीं लगता है। और ये 500 के नोटों की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। 500 का नोट लेके जाओ तो वो कहता है 300 रुपए ले लो।
1000 रुपए लेके जाओ।
1000 रुपए लेके जाओ कहता है 700 ले लो।
500 का नोट लेके जाओ दुकानदार का, तो वो बोलते हैं सीधे 500 का लो जी।
मजदूरी के आप वहाँ से यहाँ पर आ गए ये काम करने, और आप जब आए थे तो काम अच्छा शुरू हो गया था?
सही थी जी, पहले सही थी, जब से ये पैसे बंद हुए तब से काम बंद हो गया जी। बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं जी, क्या करेगा आदमी।
जब पैसे ही नहीं चले तो क्या करेगा आदमी, भूखी तो मरेगा ना। ना तो रोड पर काम चल रहे हैं जी, ना कुछ हो रहे हैं जी।
सर ऐसा है कि हम लोग मान लो अपने कंपनी में काम करते हैं, मगर कंपनी में वही अपने यहाँ से लेबर को ले जाते हैं, मान लो कहते हैं कि नए लोड देंगे और खुले पैसे देंगे, और यहाँ से मान लो ले जाते हैं पर, लेकिन वो हजार हजार के पाँच पाँच सौ के लोग पकड़ा देते हैं। उसमें मान लो अपने ये है कि मान लो 100 रुपया मान लो अपने वो खर्चे वाला काटते हैं, वो बहुत ज्यादा दिक्कत है।
कैसे क्या किया जाएगा,
किराए का क्या करेंगे,
क्या करेंगे, चोरी तो डकैती तो नहीं करेंगे, मेहनती करके तो देंगे, किराया मालिक तो मानता नहीं है जी।
आप बताइए आप कहाँ से हैं?
हम अलीगढ़ से हैं, शिव कुमार नाम है हमारा।
क्या काम करते हैं आपके पास ये झोला, इसमें क्या है?
ये मिस्त्री के औजार हैं जी, फंटी और काम चल रहा नहीं है। 8 तारीख से पहले काम अच्छा चलता था, साग सब्जी रोटी हमारी दाल रोटी चलती थी। जिस दिन से नोट बंद हुआ है सब्जी खाने को है ही नहीं है।
परिवार में कौन कौन है आपके?
3 बच्चे हैं हमारे, एक घरवाली है, 5 मेंबर हैं हम, ठीक है। उनका परिवार हमारा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
आपको एक दिन में कितनी दिहाड़ी मिलती थी आप जो काम करते?
पहले मिलती थी हमें 500 रुपए, अब 500 का नोट देते हैं। हम किसी राशन वाले के पास जाते हैं, राशन वाला कहता है नहीं देंगे हम, खुले पैसे लाइए आप, तो सर जी हम कहाँ से लाएं?
क्या आपने कभी वापस जाने की सोची है जहाँ से आए हैं वहाँ?
कोशिश कर रहे हैं लेकिन किराया भाड़ा नहीं है हम पे, किराए पे रहते हैं, जो पैसा कमाते थे वो मकान मालिक को दे देते, अपना दार रोटी चल रही थी, अब दार रोटी में भी हीला है।
हम मजदूर के लिए क्या है कि हम मजदूर के लिए हमें गलत हो गया है, 500 का 1000 का नोट ले जाओ राशन दुकान पे तो वो क्या कर रहा है कि तू 400 रुपया लो और 400 रुपया का राशन ले जाओ, 100 रुपया हम रख लेंगे।
क्या खा रहे पिछले एक हफ्ते से, क्या खाया है?
एक हफ्ते से भाई कहीं पार्ले जी हुआ, कुछ बिस्कुट हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, थोड़ बहुत ले जाकर आदमी मजदूरी करता है। अभी तो पैसा नहीं है, मैं खाऊंगा क्या आज, आज खाऊंगा क्या मैं, मेरे पास पैसा नहीं है। मालिक के पास मैं काम करने जाऊँ, किसी के पास मैं पैसा नहीं है। अभी काम राजमिस्त्री का काम करता हूँ, मेरे पास में पैसा नहीं है, अब क्या करूंगा मैं। अभी भी मैं छपरा जिला बिहार का रहने वाला हूँ।
नाम क्या आपका छपरा?
मेरा नाम सुदन प्रसाद है, लेकिन देखो मैं इस हाल में हूँ, मैं क्या करूँ। पहले तो नोट निकालते तो छोटा नोट निकालते, बड़े नोट निकाले।
दिल्ली में बाहर से आए मजदूरों से बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
भारत प्रशासित कश्मीर में सेना ने कहा है कि घाटी के माछिल सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने नियंत्रण रेखा के उस पार से भारतीय सैनिकों पर फायरिंग की, इसमें 3 जवान मारे गए, इसमें से 1 जवान की लाश के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस घटना की जानकारी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को दे दी गई है। नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लगातार तनाव बना हुआ है, और जानकारी के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर कई सप्ताह से आर पार फायरिंग और शेलिंग के कारण एलओसी के निकटतम इलाकों में तनाव पाया जाता है। आज ही सेना ने दावा किया कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के मछिल सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय निशानों पर शेलिंग की, जिसमें 3 जवान मारे गए। सैनिक अधिकारियों ने इस बारे में वक्तव्य जारी नहीं किया। तहम अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि पाकिस्तान ने एक बार फिर आज दोपहर को सीज फायर समझौते का उल्लंघन किया, जिसमें 3 जवान मारे गए। सेना का दावा है कि मारे गए जवानों में से 1 की लाश के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये 3 जवान नियंत्रण रेखा पार करके कोई ऑपरेशन कर रहे थे या फिर पाकिस्तानी रेंजर्स ने ही घुसपैठ करके ये कार्रवाई की है। तहम सैनिक अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करेंगे। सैनिक अधिकारियों के मुताबिक 29 सितंबर को भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी ठिकानों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर 100 से अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। उत्तरी कश्मीर के ही बांडीपोरा जिले में आज एक मुठभेड़ के दौरान 2 चरमपंथियों को मार गिराया गया। पुलिस का कहना है कि इनके कब्जे से हथियार और गोली बारूद के अलावा नई करेंसी के नोट भी मिले हैं। इस मुठभेड़ के बाद जिले में लोगों ने सेना और पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन किए। गौरतलब है कश्मीर पहले ही अलगाववादी आंदोलन के कारण 4 महीने से अधिक समय से अस्थिरता का शिकार है। दर्शनों का सिलसिला रुक तो गया है, लेकिन अलगाववादियों की कॉल पर लगातार बंद है। आंदोलन 8 जुलाई को उस वक्त शुरू हुआ था जब चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की पुलिस ऑपरेशन में मृत्यु के बाद लाखों लोगों ने इनके जनाजे में जाने का प्रयास किया था। हम उन्हें पुलिस और सुरक्षा फोर्सेज ने रोका। पिछले कई वर्ष से कश्मीर में चरमपंथियों के प्रति लोगों में सहानुभूति बढ़ गई है। पुलिस का कहना है कि 100 से अधिक स्थानीय युवाओं ने जंगलों का रुख किया है और वो पुलिस कर्मियों की राइफल्स छीनकर हिंसक कार्रवाइयों की योजना बना रहे हैं। रियाज मसरूर, बीबीसी, श्रीनगर।
कानपुर के नजदीक हुई रेल दुर्घटना में घायलों का इलाज कानपुर और पोखराया के अस्पतालों में चल रहा है। हमारे संवाददाता जुबैर अहमद को ऐसे दो बच्चे मिले जिनके माता पिता का अभी तक कोई पता नहीं है।
मैं इस समय सीएससी पोखराया अस्पताल में हूँ, जो यहाँ का स्थानीय सरकारी अस्पताल है। ट्रेन हादसे के बाद यहाँ पर लगभग 100 के करीब मरीज लाए गए, जो यात्री घायल हुए थे। उनमें से कई इलाज के बाद उनको छोड़ दिया गया, वो अपने घरों को जा चुके हैं, लेकिन कई अभी इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, जिनमें दो ऐसे छोटे बच्चे हैं जो बुरी तरह जख्मी हालत में लाए गए थे। वो बेहोश थे और उनके परिवार वालों का अब तक कोई पता नहीं चला है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो ये कह रहे हैं कि बच्चे उनके हैं, लेकिन अभी सरकार इसका पता लगा रही है कि वाकई वो उनके परिवार वाले हैं या नहीं। आइए अंदर देखते हैं उन बच्चों का क्या हाल है। सर, डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये जब बच्चा आया था तो किस हालत में था?
जी, ये बच्चा ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ है उसमें आया था, कल आया था 7 बजे के आसपास, और ये बच्चा काफ़ी अनकॉन्शियस था, सिवियरली डिहाइड्रेटेड था, और इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, गंभीर थी, और ये हमारे अस्पताल में आया। हम लोगों ने इसको मैनेज किया। इस बच्चे के पैर के निचले हिस्से में फ्रैक्चर है, जिसको हमने रिड्यूस करके जो है इसको मैनेज किया है, प्लास्टर लगाया है। बाकी इस बच्चे के दाहिने हाथ के छोटी उंगली में और अंगूठे में अब्रेजेंस है, मामूली खरोच सी है, जिसको बैंडेज करके मैनेज किया गया है। और इस बच्चे को काफ़ी जो है ट्रीट किया गया, फ्लूड लगाया गया।
अभी ठीक है बच्चा?
अभी इस समय ठीक है,
बच्चा खा रहा है,
खा पी रहा है, ठीक है,
पहले से बेटर है। परिवार वाले अभी
कुछ क्लियर पता नहीं चला है, लेकिन कुछ लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बच्चा हमारा है, लेकिन उस उनको जो है हम कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है बाल विकास अधिकारी है उनके थ्रू बच्चे को हम लोग रखा जाएगा।
बच्चे, आपका नाम मालूम है? आपका नाम क्या है? क्या नाम है?
आदर्श।
अच्छा, और ये एक दूसरी बच्ची ये है ना, ये कह रही हैं कि
ये इनके देवरानी की बेटी।
आपकी?
मैं इसकी बड़ी मम्मी हूँ, वो भी बड़ी मम्मी है, ये भाई मेरा लड़का है, ये इसकी माँ भर्ती है उन अस्पताल में, ये नहीं जानते पड़ोसी थे,
पता नहीं चल पा रहा है किस अस्पताल।
नहीं नहीं, पता है।
अच्छा, कानपुर में?
कानपुर।
अच्छा, आप लोग कहाँ रहते हैं?
इंदौर रहते हैं। अच्छा। जा रहे थे बनारस, गाजीपुर जिले में मेरा गांव है।
अच्छा।
मेरे देवर के साथ ही था।
और इनके पिताजी?
इसके पिताजी चरचक्के से जा रहे थे, इन लोग तो ट्रेन में थे।
ये थे पोखराया से बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। तुर्की की सरकार ने प्रस्तावित विधेयक की एक विवादास्पद धारा को हटा दिया है, जिसमें ये प्रावधान था कि किसी नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पकड़े गए पुरुष की सजा उसी लड़की से शादी करने से माफ कर दी जाएगी। इस प्रस्तावित विधेयक पर आज संसद में मतदान होना था, लेकिन सड़कों पर इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना हुई। आलोचकों का कहना है कि प्रस्तावित विधेयक से बलात्कार को कानूनी दर्जा मिल जाएगा। पूरा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
राजधानी अंकारा में संसद में आज इस विवादास्पद बिल को पारित कराने के लिए मतदान कराया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने इस विधेयक को संसद में पेश करने से पहले ही वापस ले लिया है। इस विवादास्पद बिल में ये प्रावधान था जिसके तहत किसी नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पकड़े गए पुरुष की सजा उसी लड़की से शादी करने से माफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस कानून को दोबारा पेश करने से पहले इसकी समीक्षा करेगी।
हम इस प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ताकि संसदीय समिति इसकी समीक्षा कर सके, समाज में एक व्यापक आम सहमति बने और विपक्षी दलों को अपनी राय देने का वक्त मिल सके। हमारे राष्ट्रपति अर्दोआन ने भी कहा है कि व्यापक सार्वजनिक सहमति बननी चाहिए।
प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम के शब्द। इस बिल को राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन की सरकार और सत्ताधारी AKP पार्टी ने पेश किया था। इस विवादित विधेयक का विरोध तुर्की के कई शहरों में हो रहा है। इस्तांबुल में शनिवार को हुए एक विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। यही नहीं, इज्मेर, ट्रेबजोन और इस्केशर शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं ने तुर्की की सरकार से निवेदन किया था कि इस बिल को पारित नहीं करें। संयुक्त राष्ट्र ने तर्क दिया था कि ऐसा करने से यौन शोषण और बाल विवाह को रोकने की देश की क्षमता कमजोर होगी। हालांकि सरकार का कहना है कि इस विधेयक का इरादा जेल में बंद उन पुरुषों को अपराध मुक्त करार देना था जिन्होंने नाबालिग लड़कियों से उनकी या उनके परिवार वालों की मर्जी से शादी की थी। इस विधेयक का समर्थन करने वाली सत्ताधारी एके पार्टी की एक सांसद राउजा केवेक्सी कान का कहना है कि इसे लेकर गलतफहमी हुई है।
It is about giving normality to young women who have been married underage due to cultural norms, other norms.
ये युवा महिलाओं की स्थिति को सामान्य बनाने के बारे में है जिनकी सांस्कृतिक आधारों और अन्य मानदंडों के कारण कम उम्र में शादी कर दी गई और अब अपने बच्चों के साथ वो परेशान है क्योंकि उनके पति जेल में है।
सांसद राउजा केवेक्सी कान के शब्द। आलोचकों का कहना है कि प्रस्तावित विधेयक से बलात्कार को कानूनी दर्जा मिल जाएगा और इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। तुर्की की सरकार ने जोर देकर कहा इस विधेयक का मकसद बाल विवाह की समस्या का समाधान ढूंढना था। एलिफ शफाक तुर्की की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली उपन्यासकारों में से एक हैं। वे कहती हैं,
One of the main weaknesses of this draft is that word consent. What does that mean? We're talking about children here.
इस मसौदे की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है वो शब्द रजामंदी। इसका क्या मतलब है? हम यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर बलात्कारी परिवार के साथ सौदेबाजी कर रहा है, अगर वो परिवार वालों को खरीद लेता है या उन्हें धमकाता है, तो परिवार वाले आसानी से पीछे हट जाएंगे।
तुर्की में विवादास्पद विधेयक वापस लिया गया। 100 वुमेन नाम की हमारी विशेष सीरीज में कल हमने आपको सुनवाई उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज के लोगों की आवाज़ें। मोहनलालगंज वो लोकसभा सीट है जहां से अब तक सबसे ज़्यादा महिला सांसद जीती हैं। एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ये सीट राज्य के पिछड़े इलाकों में से एक मानी जाती है, लेकिन किसी सीट से बार बार महिला सांसद का चुनाव जीतना से मान लिया जाए कि क्या वहां की औरतों की जरूरतों को पूरा किया जाने लगेगा, क्या उनकी जिंदगी संवर जाएगी, समाज में उनका रुतबा बढ़ जाएगा। दिव्या आर्य।
लक्ष्मी रावत जी, बहुत सुंदर साड़ी पहनी है आपने, हरे रंग की प्यारी सी, और बहुत अच्छी लग रही है, खूब सजी हुई है। तो ये बताइए, हम यहाँ पर औरतों से पूछ रहे हैं उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं, तो ये आपको क्या लगता है आपके ग्राम में, आप तो सरपंच हैं यहाँ पर, क्या क्या परेशानियाँ हैं औरतों के लिए, क्या काम होना चाहिए?
अभी तो हम कुछ ना बता रहे, पहली बार जीते हैं, अभी ज़्यादा हमको मालूम ही नहीं है।
लक्ष्मी रावत हैं तो अपने गांव की सरपंच, पर पांचवी तक ही पढ़ी हैं। कौन देखता है सारा काम?
सारा काम ही देखते हैं इनके मालिक।
ये मतलब आपके पति?
हाँ,
देखते हैं सब।
आपके मालिक कौन है?
शिवशंकर यादव।
तो वो क्यों देखते हैं?
अरे देखते नहीं, यानी कि साथ हम रहे,
मतलब साथ
हरदम, तो सब काम देखे थे, जैसे काम आवे तो एस्टीमेट बना के सब कुछ दे दिया, अब पास होके आ जाए तो काम चालू हो जाए बस।
नहीं, पर क्या उनका वो राजनीति से जुड़े रहे हैं पहले कोई काम?
पहले प्रधान रहे ना।
अच्छा, वो पहले प्रधान थे तो वो उन्हीं का काम चल रहा है,
तो इनको खड़ा कर दिया प्रधान।
अच्छा, क्योंकि अब महिला सीट हो गई,
महिला सीट हो गई थी इसलिए इनको खड़ाया गया था।
जाहिर था कि गांव वालों के लिए प्रधान अब भी शंकर यादव ही थे।
साइन वाइन तो सब हमारे हैं,
वो जहाँ बताते हैं वहाँ साइन।
विश्वास है कि कभी गलत कागज तो हमारे पास भेजबे नहीं करेंगे, जो कागज भेजते हैं वो सही वाला भेजते हैं, गलत वाला कभी नहीं भेजते।
मैं निकलने लगी तो लक्ष्मी अपनी साल भर की बेटी को गोद में लेकर थोड़ा झेपते हुए बोली,
हम तो सोचते हैं मैडम बिटिया साइन हो जाए, सीधे इनका स्कूल भेजना और बाकी कुछ नहीं।
पास के खुजेता गांव में औरतें पानी की बाल्टियां ले जाती दिखी, उन्हें रोक उनमें सबसे कम उम्र की लड़की से बात शुरू की।
यहाँ के लोग तो अपनी बेटियों को पढ़ाते भी नहीं, ज्यादा कहेंगी कि वहाँ बाहर कहाँ पढ़ने जाएंगी, पढ़ाना चाहिए।
तुम स्कूल से के लिए कितनी दूर जाती हो यहाँ से?
1 किलोमीटर।
तो ये 12वीं तक का स्कूल है, तो 12वीं के बाद पढ़ाई करनी है तुमको?
हमें तो करनी है, पर हमारी मम्मी नहीं कहती पढ़ाने के लिए।
और अगर तुम पढ़ाना चाहें भी वो, तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, कॉलेज कहाँ पर है?
डिग्री कॉलेज वहाँ पर है, लखनऊ में।
तो लखनऊ तक जाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं बना?
यहाँ पर नहीं।
बन जाता तो सहूलियत होती, तो शायद भेजती हूँ मम्मी?
नहीं भेजती,
फिर भी नहीं भेजती,
पैसा नहीं है, क्या करें, पैसा अपने पास हो तो हम पढ़ाई सके। अभी कई साल हो गए कपड़ा नहीं पहन, कपड़ा चिल्ला रही, अब आगे पैसा हो तो कोई कमाई नहीं।
तो तुम स्कूल जा रही हो, तुम्हारा मन करता है कभी राजनीति में जाने का?
करता क्यों नहीं?
क्या बनना चाहोगी बताओ, प्रधान बनना चाहोगी कि प्रधानमंत्री बनना चाहोगी?
प्रधान बनना चाहेंगे, प्रधानमंत्री कहाँ बन पाएंगे।
तो पर अगर ऐसे जैसे लक्ष्मी रावत तुम बता रही हो कि प्रधान है पर काम शंकर यादव करते हैं, तो कैसे वाली प्रधान बनना चाहती हो?
जैसे शंकर यादव।
क्या बात है। तुम्हें लगता है कि गांव वाले चाहते हैं कि औरतें ऐसे प्रधान बन जाएं और उनके पीछे उनके पति तो या कोई और ना हो?
गाँव वाले तो देखे जरूरत की ना हो पाए, हमारे आगे दूसरा कोई खाए ना।
कह रही है कि यहाँ मतलब सब लोग जलते हैं कि ये हो ना पाए,
औरतें आगे बढ़ ना पाए।
नेहा की साफ सोच और ऊंची उड़ान से मैं दंग थी। लगा कहीं कुछ तो बदल रहा है, औरतें राजनीति की सीढ़ी चढ़ सकती हैं, ये कल्पना तो लड़कियों के जहन में जगह बना पा रही है। 2009 से 2014 में यहाँ सांसद रहीं सुशीला सरोज भी ये समझती हैं।
सुरक्षित सीट है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर सड़क नहीं थी, पुल नहीं थे, बिजली नहीं थी। लखनऊ से ताज्जुब की बात है, राजधानी से सटा हुआ है वो, और इसके बावजूद विकास बहुत नहीं हुआ। अब जा करके डिग्री कॉलेज वहाँ लड़कियों का कोई था नहीं, तो एक डिग्री कॉलेज था तो प्राइवेट ही, मैं उसमें ले आई उनको, तो लड़कियों का निगोहा में एक डिग्री कॉलेज भी हो गया है।
पर यह भी सच है कि मोहनलालगंज के गाँव तक पक्की सड़कें बनी हैं, जगह जगह हैंडपम्प हैं और औरतें कम से कम वोट डालने में तो पीछे नहीं। छिबऊ खेड़ा जैसे कई ऐसे गांव हैं जहां हाल के सालों में ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं।
बहुत दिनों से सुन रहे थे कि अब लाइट आएगी, अब आएगी, खुशी तो हो ही रही थी, लेकिन जब आ गई तब पता चला कि हाँ लाइट आ गई, ऐसे तो बहुत काफी।
अपने घर के बाहर चारपाई पर माँ के साथ बैठी प्रियंका यादव बताती हैं कि करीब 100 घरों के इस गांव में पहले किराए पर कार की बैटरी लेकर टीवी चलाने या मोबाइल चार्ज करने जैसी जरूरतें पूरी की जाती थी।
जिस दिन हमारी दीदी की शादी थी उसी दिन यहाँ लाइट चली गई थी, उसी दिन।
तो तुम्हारी दीदी तो खुश हो गई होंगी।
और क्या, उसी दिन, यही नाम हमेशा चलेगा कि हाँ उनकी, गांव में भी सब लोग कहते हैं उनकी शादी थी उसी दिन लाइट आई थी, है ना।
पर उसके लिए और बहुत कुछ है जो नहीं बदला है।
हमारा एडमिशन नहीं होता, सब लोगों ने मना कर दिया था, इतनी पढ़ाई काफी है, लेकिन जब बगल में भी इनके यहाँ भी एक लोग हैं वो भी जाती हैं, और उन्होंने एक साल घर में बैठ के तब किया, जब हमारा पूरा हुआ वो हमसे एक क्लास आगे थी, जब पूरा हुआ तब उन दोनों लोगों ने एडमिशन लिया।
तो इसीलिए वो एक साल बैठी कि साथ तुम लोग जा सको।
हाँ।
अच्छा, और अब
हमारे यहाँ गांव में इतना ज़्यादा नहीं सिचुएशन है कि बाहर लड़कियाँ ज़्यादा निकलें या 1,000-2,000 के लिए इधर उधर जाएं, हम लोग फॉर्म भी नहीं भरते हैं ज़्यादा।
माँ थोड़ा किनारे होती हैं तो हिम्मत कर वो मुझसे पूछती है कि मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई कहाँ से की। जब मैं पलटकर पूछती हूँ कि वो भी दिल्ली चलकर पढ़ाई करना चाहेगी क्या, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखर जाती है। उन दबे होठों की मजबूरी और उन चमकती आँखों की उम्मीद के बीच ही कहीं है मोहनलालगंज की औरतों की कहानी। दिव्या आर, BBC, मोहनलालगंज।
और अब चलते चलते एक दुखद समाचार। कर्नाटक संगीत के पुरोधा M. बाल मुरली कृष्णा का आज चेन्नई में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आंध्र प्रदेश में संगार गुप्तम में जन्मे बाल मुरली कृष्णन ने 6 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया था। 80 के दशक में मशहूर गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा में भी उन्होंने अपनी आवाज दी थी। आइए सुनते हैं इसकी एक झलक। बाल मुरली कृष्णा की अमर आवाज। और अंत में चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। तुर्की की सरकार ने उस विधेयक को वापस ले लिया है जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि इससे बाल विवाह और बलात्कार को वैधता मिल जाती। ब्रिटानिया अधिकारियों ने नवनिर्वाचित अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस सुझाव को खारिज किया है जिसमें उन्होंने नाइजल फराज को अमरीका में ब्रितानी राजदूत बनाने की मांग की थी। BBC समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।